सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 118वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
आज सुर्खियों में कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के मन के बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी पर। ये इस साल मन की बात की पहली कड़ी भी है। इस मन की बात के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि भारत प्रखर और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की।
एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है।
प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि यह तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है।
हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है।
जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियों और कई अन्य चीजों की भी आज चर्चा की है, आपके अनुसार मन की बात के आज के अंक में सबसे उल्लेखनीय बातें कौन सी हैं?
देखिए, जैसे आपने कहा, खास करके हमारे वैज्ञानिकों ने किस तरह नए नए कदम ले रहे हैं, कैसे कहां तक पहुंच गए, हमारी रिसर्च कहां पहुंच रहा है, इसमें इन्होंने कई बातें आज सामने रखी। इसरो में कैसे काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में स्पेस काम कैसे हो रहा है, इसमें इन्होंने जोड़ा है कि पहली बात तो पिक्सल की जो संगठन है, प्राइवेट संगठन ने फायरफ्लाई एक प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को स्पेस में भेजा है, जिससे बहुत फायदा होने वाला है और इसकी कमर्शियल यूज, जो हमारी स्पेस की जो कमर्शियल यूज को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उसका एक बड़ा सफलता है। और दूसरी बात जो अभी पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ है वो है स्पेस डॉकिंग, यानी हमारी सैटेलाइट्स से जुड़कर जाके डॉकिंग किए, वो भी बड़ी बात है। और तीसरा जो उपलब्धि है कि हम किस तरह के जो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं स्पेस पे, खास करके लोबिया यानी काउपी, इसको चावली भी बोलते हैं, इसको स्पेस में ग्रो करने की बड़ी कोशिश हुई है। नॉर्मली माना जाता है कि अंतरिक्ष में कोई प्लांट लाइफ को ग्रो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेबोरेटरी कंडीशंस में ये हमने सफलता पाई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने वो भी जिक्र किया कि IIT मद्रास, उन्होंने किस तरह एक एक्सटेंशन सेंटर जो खुले हैं, एक्सटेम सेंटर, जिसमें नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं। हमारे आगे जो चुनौतियां हैं, जैसे गगनयान, इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स के लिए लोकल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हुए, उसकी भी प्राइम मिनिस्टर जिक्र किया। तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि देखिए, जब भारत 75 गणतंत्र दिवस मनाना जा रहा है 26 जनवरी को, इसलिए आज मन की बात देखिए एक हफ्ते पहले ही हो गया। नॉर्मली जनवरी के लास्ट रविवार को होता है, लेकिन आज किया गया क्योंकि अगले रविवार 26 जनवरी है और हमारे गणतंत्र दिवस है, तो इसीलिए आज उसको उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने हमें उन भाषणों की भी याद करवाई, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी, जो मुख्य बातें उन्होंने देश के सामने उस समय रखी, इस देश की क्षमता क्या है, इस देश की जो लोगों की जो असली बल क्या है, इसको लेकर उनका अलग अलग विषय को लेकर जो बातें उन्होंने रखी थी, उसको भी प्ले किया गया था मन की बात में। और प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र करके कहा कि 26 जनवरी हमारे लिए एक प्रकार से एक माइलस्टोन बनती है, और इस बार क्योंकि अब 75 एनिवर्सरी बना रहे हैं हमारी रिपब्लिक डे की, तो बड़े बड़े जो हमारे संविधान असेंबली में जो थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, तो उन्होंने हमारे लिए जो संविधान दिए थे उसके लिए क्या सोच रखकर ये संविधान बनाया था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामना दी। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं।
इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारा पवित्र संविधान दिया।
और महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है और देश में निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी दिन हुई थी।
25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बहुत बड़ा स्थान दिया है।
भारत एक जीवंत और धड़कता हुआ लोकतंत्र है। इसके संदर्भ में आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
जब से हमारी पहली चुनाव हुई थी 51-52 में, उससे बाद कई चुनाव हुए हैं और हर चुनाव में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसके लिए प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन को बधाई दी है। सबसे जो खास बात है कि हमारी जो चुनाव आयोग है टेक्नोलॉजी यूज करने में सबसे आगे है। आपके आज के तारीख पे आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या वीवीपैट मशीन है, ये सारे हमारी टेक्नोलॉजी को दर्शाता है और साथ में कैसे हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस प्रोसेस को कैसे हम मजबूत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये सबसे बड़ी विषय है।
आज एक और अहम बात रही स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है।
कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं उनमें से आधे से ज्यादा Tier 2 और Tier 3 शहरों से हैं। हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे शहरों के स्टार्टअप में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही है।
शेखर जी, स्टार्टअप इंडिया ने भारत को एक नया रूप देने में कैसी भूमिका निभाई है?
देखिए, 10 साल पहले जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, जैसे आज पहले से जिक्र कर रहे थे, सबका हमेशा यही था कि भारत में कैसे स्टार्टअप होगा, कौन क्या कर सकता है और हमारी स्टार्टअप होगी भी तो बड़े बड़े शहर तो होगी। लेकिन आज के तारीख में जितने स्टार्टअप अभी आए हैं देश में उसमें कम से कम 50% जो है छोटे शहरों में है। और उसमें भी देखिए हमारी जो बेटियां हैं इसको आगे ले जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया जैसे कि हमारे शहर जैसे अंबाला हो, हिसार हो, कांगड़ा हो, चेंगलपट्टू हो, बिलासपुर हो, ग्वालियर हो, वाशिम हो, ये सारे जगह हैं। जैसे जगह आपको बस इनके नाम सुनते लगेगा कोई कई रेलवे स्टेशन का नाम जैसा है, लेकिन ये आज ये शहर सारे अभी एक प्रकार से सेंटर्स बन गए स्टार्टअप्स। उत्तर पूर्व में नागालैंड, ये अभी वहां पे स्टार्टअप की जो जो रजिस्ट्रेशन जो हुई है 200% बढ़ी है। और साथ में स्टार्टअप नए नए सेक्टर में प्रवेश हो रहा है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो। और इसमें से प्राइम मिनिस्टर नोट कर रहे हैं कि ये सारे देखिए ऐसे इलाके हैं जहां पे पहले कभी कोई सोचा नहीं था कि इस पे भी एक स्टार्टअप बन सकती है। तो इसका कारण है कि हमारी युवा जो है वो नया प्रकार से सोच रहे हैं, नया प्रकार से अपना काम कर रहे हैं और सफलता भी पा रहे हैं।
हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समरसता और समता का एक असाधारण संगम है, ये विविधता में एकता का उत्सव है।
कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है।
शेखर जी, कुंभ इस बार बहुत विशेष है क्योंकि इस बार जिस पैमाने पर यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इसको मैनेज करने के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए, ये बात रेखांकित करने वाली है।
बिल्कुल, देखिए इसमें स्वच्छता का भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। देखिए कम से कम 1.5 लाख टेंट्स लगे हुए हैं, 15,000 हमारे सैनिटेशन वर्कर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा सुरक्षा कर्मी कम से कम 50,000 से सुरक्षा कर्मी तैनात। इसके अलावा आप वहां पे अंडर वाटर ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पानी के नीचे अगर कोई डूब जाए कुछ हो जाए उनको ये मदद करने के लिए रेस्क्यू करने के लिए किया गया। और कई ट्रेन चलाए गए, कई बसेस चलाए गए, पूरे प्रयागराज में बहुत चीजें बदले हैं। और टेक्नोलॉजी की जो आपने बात किया, इस बार देखिए ये महाकुंभ जैसे बड़ा पर्व में हम देखते हैं कि बहुत लोग आते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, उनके ट्रैक करने के लिए एक नया सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। कम से कम 2,500 से 3,000 सीसीटीवी उस इलाके में लगाए गए हैं, जिससे कोई अगर मिसिंग हो जाते हैं, कोई कंप्लेंट आता है तो ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री हमें सबको दिशाकर चलती है, ये अपने आप में एक आध्यात्मिक पर्व है। देखिए कुंभ का मतलब है तीन चीजों उसमें जुड़ा हुआ है, एक है स्नान, दूसरा है ध्यान और ज्ञान। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं कि साधु संत सबका एक प्रकार के संगमम है वहाँ, और वहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत लोग आए जो धर्म में विभिन्न पंथ को जो फॉलो करते हैं उनकी साधु महाराज सब लोग आए हैं वहाँ, एक प्रकार से संवाद हो रहा है और साथ में समानता भी है, किसी पर रोक नहीं है, कोई भी जा सकते हैं, अपने स्नान कर सकते हैं। और ये चीज केवल प्रयागराज में नहीं है, देश में अन्य जगह में भी कुंभ होते हैं। जैसे इस बार जो प्रयागराज की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 144 ईयर्स के बाद इस बार प्रयागराज में आया है, यानी 12 साल का साइकिल जो है एक प्रकार से आया है। और कुंभ हम जानते हैं कि इस तरह कुंभ उज्जैन में भी होते हैं, नासिक में होते हैं, हरिद्वार में होते हैं। इसके अलावा देश में बाकी जितने पवित्र नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, कावेरी है, वहां पे बड़े पर्व होते हैं। जैसे कुंभकोणम का नाम हम जानते हैं, कुंभ से होता है कुंभकोणम, वो कावेरी की ये पे है, वहां पे देखे वहां भी महाकुंभ होता है, इसको महामहम बोलते हैं। तो हमारे देश में जो संस्कृति है, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व में भी जैसे गंगा सागर मेला होता है पश्चिम बंगाल में, तो ये सारी चीजें इसमें देखे कोई जात पात नहीं, कोई किसी छूत अछूत की बात नहीं है, ये सब जा सकते हैं। एक प्रकार से एक मैसेज, एक यूनिटी की मैसेज जाती है, एक हार्मनी की मैसेज भी जाता है।
प्रधानमंत्री हमेशा ही वंचित समुदायों के उत्थान के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में कुछ न कुछ उल्लेख करते हैं, देश के कुछ सुदूर हिस्सों के कुछ लोगों की भी चर्चा करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही आम लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने लक्षद्वीप और निकोबार और अरुणाचल के कुछ लोगों का उल्लेख किया है, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे?
खास करके उन्होंने जो 3-4 नाम लिए उसमें एक है दीपक नाबाम जो अरुणाचल के हैं, वो एक बड़े काम कर रहे हैं, खास करके जो मेंटली जो लोग अफेक्टेड हैं उनके लिए एक अलग घर चला रहे हैं और जो फिजिकली चैलेंज हैं उनके लिए भी। और एक हिंदू भी, एक जो रिटायर्ड नर्स है लक्षद्वीप में, वो एक काम कर रहे हैं वहां पे, लोगों को मदद कर रहे हैं जो नर्स, क्योंकि वो नर्स रहे हैं, मेडिकल कैब देने में बहुत कुछ काम कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री ने केजी मोहम्मद जी का भी जिक्र किया जो लक्षद्वीप में खास करके वहाँ के जो पर्यावरण है, जो मरीन इकोसिस्टम, उसको प्रिजर्व करने में लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने उन बातों के बीच की निकोबार के जो वर्जिन नारियल तेल जो है उसको GI टैग मिला है, यानी उसका भी ब्रांडिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे नारियल पेड़ बहुत है अंडमान निकोबार आइलैंड। वैसे दक्षिण भारत में जो तटवर्ती इलाके हैं दोनों, आपके वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में कई नारियल की पेड़ देख सकते हैं, और निकोबार के खास करके जो नारियल जो है वो उसकी खासियत भी है। वहां पे एक शुरू हुआ है अभी, उसको GI टैग मिल गया है, और साथ में महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहां बनाए जा रहे हैं जो इसकी प्रोडक्शन टेकअप करेंगे। छोटे सेल्फ ग्रुप के जैसे कॉटेज इंडस्ट्री की तौर पर इसकी एक प्रोडक्शन शुरू होगी, ये उनको रोजगार भी देगी, उनकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव लाएगा।
शेखर जी, बहुत सार्थक जानकारियों और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 118वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में